अर्थों शब्द भी अलग अलग अर्थ हैं। परसों परसों कहीं ना गए, अटके कहूं जाए बीती परसों, इतने की नाव उधार लगी, उत्मीद कहे परसों परसों, मन ही मन सुंदर सोच करे, अपनों नहीं दुख कहे परसों, जिया चाहत है उड़ीसा सकी पे बोलो नहीं जाए बिना परसों। तो गोपियां कहने लगी, उठो तू कहां पहचाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने, जाके कांटो
इतनी ठानी जाती कांटों अध्याय में वर्णन किया है। नंददास जी की युक्ति में
ताही छिन एक भ्रमर कहूं ते बन तन के कुंज माहि कुंजत छवि छाय बैठो चाहत पाम पर अरुण कमल दल जान मन मथ कर उधा भयो ये प्रथम प्रगत्यो मान
Yeah. Oh. कलाकार शास्त्रीय संगीत पहलवान विद्वान चतुर्वेदियों में वेदों के ज्ञाता ऐसी विभूतियां हैं जो जगत भर में है या नहीं छिपे हुए लोग हैं। मैं बहुत दिनों से था मथुरा में, बहुत दिनों से हूँ, किंतु इनसे कभी संपर्क हमारा नहीं हुआ। किंतु लौकिक चतुर्वेदी को शायद आप जानते होंगे,
मेरे चाचा
चाचा है अद्भुत कलाकार
दोनों भाई लौकिक
तो उनको मैं निमंत्रण करता हूँ हमारे जन्माष्टमी में और उस समय आते हैं, वो लोग भी हमें निमंत्रण करते हैं, मैं जाता हूँ। पूरा चतुर्वेदी समाज हमको बहुत ही आदर देता है, बहुत आदर। मैं योग्य नहीं होने पर भी इतने बड़े बड़े दार्शनिक मथुरापुरी में और बड़े बड़े अगाध विद्वान न जन मुझे क्यों बुलाते हैं और मुझको बहुत सम्मान करते हैं, मैं ये नहीं जानता। तो मथुरापुरी अगाध भक्ति रस का भी दशा सुंदर आप लोगों से इसी प्रकार से मथुरा की विभूतियाँ हैं।
हम आरंभ करें
कभी कभी संपर्क रखेंगे। आप अभी नवयुवक कलाकार हैं, आप और अग्रसर हो। हमने सुना है तानसेन गाते थे बहुत सुंदर, किंतु वन की हिरणियों को बुला करके माला पहना देना ये उनके लिए बस की बात नहीं थी, किंतु उनके गुरु या बैजू बावरा वो हिरणिया आ जाती उनको माला पहना देते और वो ऐसे वर्षा नहीं हो रही है वर्षा वर्षा नहीं वर्षा हो रही है उसे आग लगा दे ऐसे ऐसी संगीत गोपियों कृष्ण एक ताल को गाते थे और गोपियां उसी को ध्रुपद कोई धमार कोई कृष्ण पंचम रूप में कोकिल के रूप में गाया करते और आरोह और आरोह में गोपियां कृष्ण तो करते थे सा रे गा मा पा धा और गोपियां क्या करती थी उसी गान को सप्तम स्वर में ले जाकर के जो कृष्ण के लिए भी संभव नहीं था कृष्ण साधु साधु कह आगमन कर उस प्रभु को वशीभूत करने के लिए संगीत किए, किंतु भक्ति रस समन्वित होनी चाहिए। चतुर्वेदी समाज में ऐसे कलाकार लोग हों इस विद्या को जीवित रखें।
ज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण नामने गौर गवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्रपृगन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाधि पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्णं तवैवास्मि न जीवामि त्वयाभि इति देव्यं राधे माम चरण। क
कल हम लोगों ने श्री उद्धव संवाद से संवाद से हमने ये बतलाया था हमने कुछ प्रश्न किए और उसका उत्तर भी मैंने दिया। कृष्ण रसमय भूमि में ब्रज में न रहकर मथुरा क्यों आए और फिर यदि आए तो काम करने के बाद में कंस इत्यादि का वध कर धर्म की प्रतिष्ठा करने के पश्चात लौटे क्यों नहीं, इसके संबंध में बतलाए जे कंस का अत्याचार कहीं ब्रजवासियों पर न गिर जाए, इसलिए कृष्ण केवल उग्रसेन जी को राज्य भार दे करके अभिषेक करके राज्य पद पर लौटे नहीं, बहुत से कारण थे। कभी कभी क्यों नहीं आते, इसके लिए मैंने बतलाया गोपियों की विरह अग्नि, ब्रजवासियों की विरह अग्नि इतनी बड़ी है, विशाल दामा नल के समान, थोड़ा सा पानी हो तो थोड़ी सी आग को बुझा देगा, यदि विराट आग लगी हो तो उसमें पानी देने पर घी का काम करता है। तो एक दिन जाएं और फिर लौट आए मथुरा तो उनकी बेरहाग्नि और बढ़ जाएगी, फिर कृष्ण से भी सज्ज नहीं होगा, इसलिए कभी कभी नहीं जाते। स्वयं न जाकर के दूत भेजा, इसके लिए भी हमने कहा नहीं जा सकते, न जाने के बहुत से कारण हैं, उनको हमने कल गिनाया था। और फिर एक बात है, यदि नहीं गए खुद तो ब्रज गोपियों को और नंद बाबा यशोदा मैया राधा इत्यादि जी को मथुरा से वृंदावन से ब्रज से बुला लेते, बुलाया क्यों नहीं। यदि जरासंध के आक्रमण के समय में कृष्ण एक ही रात में सारे मथुरा वासियों को राती रात पलक झपते ही और कहां द्वारका में ले जाकर के इतना सुंदर अच्छा वो बना, बीच बीच में उद्यान, सड़के चौड़ी चौड़ी, पाठशालाएं, स्कूल और क्या क्या बन गया। एक रात्रि में ही वो रात में सोए थे मथुरा और दूसरे देखा जो कृष्ण बलदेव के साथ में एकदम चले गए द्वारका। उनके लिए क्या संभव है, अघटन घटन पटीसी शक्ति संपन्न है। तो वो इन ब्रजवासियों को नंद बाबा मैया अपने सखाओं को और विशेष करके गोपियों को राधा विशाखा इत्यादि को बुला क्यों नहीं लेते, वहीं पर बुला लेते और एक साथ में रहते। इसमें भी एक रस संकट होता है, शायद आप लोग समझे कि नहीं समझे, रसिक समझ सकते, जिनके गुरु ऐसे हो जो रसिक हो, जो सुखदेव गोस्वामी की लाइन में है, जो निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत तव संजीव, ऐसा गुरु रसिक हो। उद्धव जी भी रसिक नहीं बन सके, रसिकों की चरण की धूली स्पर्श करने के लिए तो क्यों नहीं बुला लेते। और संकट ये है कि यदि वो बुला लेते हैं वहां मथुरा में कृष्ण का क्षत्रिय वेश और क्षत्रिय आवेश है, मैं क्षत्रिय हूं, मोर मुकुट नहीं है, बंसी हाथों में नहीं है, वाला जैसे गोचारण के समय में जाते हैं ऐसा भाव, और गोकुल जैसा आवेश भी नहीं, उनमें आवेश है क्या, मैं क्षत्रिय हूं जादव हूं। और वृंदावन में कृष्ण का आवेश कैसा है, ब्रज का आवेश और ब्रज का आवेश कैसा। इसलिए हमने पंडित जी को कहा जो ये वो सभ्यता पाश्चात्य और हमारी सभ्यता में जरा मेल नहीं, अरसाभास हो जाता है। आप क्रिकेट वाले ऐसा पहन सकते हैं, कोई बात नहीं। तो वृंदावन में कृष्ण का वो कवेश है, वेणु है हाथों, वो क्या है, वो गोपवेश वेणुकर नट किशोर नटवर है वहां। और वहां मथुरा के जादव लोग उनको परदेवता समझ, विष्णु नंद परदेवता है, तो वहां पर परदेवता है, उनके आराध्य देव हैं जादवों के। अरे भाई वृंदावन में गोपियों के स्वजन हैं, पुत्र हैं, उनकी डांट फटकार सुनते हैं, रस्सियों से कोई बांध देता है, उस परम देवता ये ब्रज में नहीं है, उनके ब्रज परम देवता ये माता पिता और ये भाई बंधु। जादव कृष्ण की पदधूली सिर पर धारण करके और उनकी उपासना करते हैं जादव लोग, विशेष करके उद्धव इत्यादि। और ये ब्रज के जो कृष्ण है उनके कंधे पर सखा लोग बैठ जाएंगे, कहते चल चल फट फट फट, और पैर कहां रखते हैं, कृष्ण को पराजित कर देते हैं, और कृष्ण उसमें भी बड़े मुस्कुराने लगते हैं। देवकी मां कंस के मारने के बाद में कृष्ण उनके चरणों में गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं, स्तोत्र वो कर रहे हैं, और देवकी जी सहमी सी हुई है, डर गई है, अरे ये तो ब्रह्म नहीं है, जन्म के समय हमने चतुर्भुज रूप में देखा और आज ही कंस को इतना बड़ा भारी बलवान, हजार हाथियों का बल कंस के अंदर, और उसको छट मार करके गिरा दिया, चारण मस्तिष्क जैसे पहलवान उसको, इसलिए उनका प्रणाम नहीं ले सकी कृष्ण का। और उधर यशोदा जी क्या करती हैं, रस्सियों से बांध देती हैं, कहती है कि फिर करेगा, बेंत लेकर के कह रही, गंदा लड़का, बंदर बंधु, ऐसे कैसे उस परब्रह्म को, और वो सीख सकते हैं कि मैया गोदी में चढ़ा। एक बार नारद जी गए ब्रज में यशोदा जी के घर ब्रह्म को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और देखा कृष्ण लोटपोट कर रहा, और यशोदा मैया ऐसे कर रही, खबरदार तुमको कभी गोदी नहीं लूंगी, दूध नहीं पिलाऊंगी, बहुत गंदा लड़का है, अभी तुमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और तुम मट्टी में इसको इधर उधर कर दिए। यशोदा तेने कौन सी तप की, यार पर ब्रह्म तुम्हारे अंगने में लोट पोट रहा है और तुम उसे डरा धमका रही है। तो ये ब्रज के ये कृष्ण है, वो पर ब्रह्म रहे जहां पर रहे। कृष्ण को जादव लोग भोग लगाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, और वही ब्रज में नंद बाबा बैठ करके अपना जूठा खिलाते हैं। देखो तो कैसा भाव, आप लोग अभी कृष्ण को अपना जूठा नहीं खिला सकते, वो वैसे ही जादव नहीं खिला सकते। और यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण नंद बाबा की गोदी में दे देती हैं कृष्ण दाऊ जी को, और अपने खाते भी हैं, उनको खिलाते हैं फिर अपने खाते हैं। कृष्ण ब्रज में खा करके दधि गोदन, वो मुख नहीं धोते, वो चलिया बस हो गए, रीति नीति वेद की शास्त्र विधियां ये सब कहां उड़ जाती हैं, ये ब्रज है, ब्रज में वो रीति नीति नहीं। कृष्ण को कोई गाली दे ये कोई रीति है, और कृष्ण है धूर्त चोटे लम्फट मिथ्याभाषी अंतर काला बाहर काला, ये कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी स्तव स्तुति करते हैं तो वो उनके तरफ में मुख नहीं देते, और यहाँ ब्रज की गाड़ियों को सुनकर के परम आनंदित आह्लादित होकर के सुनते हैं, यह है ब्रज। उद्धव जी भी आए किंतु ब्रज की ऐसी महिमा नहीं क्यों देखा दूर से। देखो तो ये बतला रहा था कि यदि ले जाएं, उद्धव जी कहते हैं जैसे मैं तुमको ले चलता हूं, कृष्ण तुमको बुलाए हैं, चलो तुम। तो कहते हैं ये संभव नहीं, ऐश्वर्य भूमि और माधुर्यमयी भूमि, ये जैसा दोनों का वर्णन किया, एक जगह लाने से रस संकट उपस्थित होगा। रस संकट क्या, यदि अपने घर में हैं अपनी पत्नी के साथ में और मैया वहां आ जाए रात में तो क्या होगा, रस संकट होगा ना, मैया को पलंग से उतर करके मैया को प्रणाम करना पड़ेगा और पत्नी जी सामने एक तरफ में खड़ी हो जाएगी। और यदि मैया नहीं रहेगी पलंग पर, दोनों हैं नग्न वस्त्र हैं, नग्न हैं कि कैसे हैं उनको कोई भी परवाह नहीं, एक दूसरे के अंग बने हुए हैं, ये रस संकट है। तो ब्रज में ये यदि जाए तो रस संकट हो जाएगा। नंद बाबा वहां पर सामने रह गए, अरे ये तो जादुओं की सभा में ये जादविंद्र या द्वारकाधीश है, वहां पर कृष्ण सोने का मुकुट पहनेंगे, उनके चारों तरफ में 10-20 अंगरक्षक होंगे और ब्रज में ये सब की कोई जरूरत नहीं। यदि गोपियां आए और देखेगी कि 16,000 रानियां वहां की बैठी हुई हैं और 16,108 तो गोपियां क्या करेंगी, संकट हो जाएगा। इसलिए गोपियां ब्रज को नहीं छोड़ती हैं, कृष्ण छोड़ दें वो नहीं छोड़ती, से एक पग भी आगे नहीं जाए। वैसे तो लिखा है वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छ, कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के नहीं जाते हैं, वो द्वारकाधीश या मथुरेश कृष्ण छोड़कर के जाते हैं नंद के रूप में। इसको भी तात्विक रूप में समझना बड़ा कठिन है, अभी यदि इस प्रसंग में बोलने लग जाऊं तो मेरा जो विषय है वो रह जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप, यदि इसके लिए 15-20 दिन का नियमित समय कभी हो तो इस पर हम विवेचना कुछ कर सकते हैं। तो गोपियां नहीं आ सकती, नंद बाबा नहीं आ सकते, संभव नहीं है उनके लिए, गोपियां उनके साथ में कैसे रह सकती, गोपियां गोपियों के साथ में रहेंगी, 16,000 रानियों के साथ में नहीं रहेंगी। और इसकी अनुभूति द्वारका की जो 16,108 रानियां अनुभूति यहाँ करती हैं, वो देखते हैं कि कोई रुक्मणी सत्यभामा कृष्ण नहीं करते, सब क्या करते हैं, बस राधा कृष्ण गोपी कृष्ण इत्यादि करते हैं। अब इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे रूप गोस्वामी का भक्ति की परिभाषा युक्त एक श्लोक, भक्ति किसको कहते हैं, शंकर के मंदिर में गए शंकर जी के और चौकटार दबाने लगे, शंकर जी यदि मेरी लड़की की शादी हो गई तो 1 रुपये का बताशा आपको चढ़ाऊं, ये भक्ति हुआ कि नहीं, ये तो भगवान को से अपना अदाय कर रहे हैं ना, अपनी कामना उसके लिए प्रसन्न होने के लिए 1 रुपया का बताशा बांट दिया और कृष्ण तुम्हारी लड़की की शादी करा दे। ऐसे जो शिव के पास में जाते हैं या देवताओं के पास में भी जाते हैं, भगवान के पास में जाते हैं, अधिकांश लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए वो लोग जाते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कृष्ण को भक्ति करते हैं, ये उनके दिमाग में आता ही नहीं। ये तो यदि सदगुरु ऐसा हो समझाए बुझाए और उनके संग में कुछ दिन रहे तब समझेगा। कहते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। पहले इस चीज को समझा जाए, कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, कृष्ण या कृष्ण के जो अवतार हैं प्रकाश विग्रह हैं जैसे राम है, नृसिंह है, कल्कि, वामन इत्यादि, विशेष करके उसकी अंतिम अवधि कृष्ण तक है, जो कृष्ण को अपना आराध्य मानकर अपने तन से, मन से, वचन से और इनसे अतिरिक्त भावनाओं से, इसके भी अतिरिक्त आत्मा से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही नयन तज धारावत तैल धारावत अविच्छिन्न गति से उनका चिंतन करें, मनन करें, सेवन करें, तो ये भक्ति हो। यदि आपको शंकर जी की भक्ति करते हैं ठीक है अपने स्थान पर, किंतु उसको भक्ति नहीं कहेंगे, क्यों? कृष्ण ही भगवान है और शंकर इत्यादि जो हैं, हनुमान जी हम लोगों के प्रणम्य हैं, उनके कृपा से भगवत कृपा मिलेगी, ये बात तो ठीक है, किंतु स्वयं भगवान नहीं। शंकर जी ने कभी राजक्रिया कर सकते हैं? वो गोपी बन करके वृंदावन में पधारेंगे और तपस्या करेंगे कि मैं उनका राज देखू? यहां तक कि रामलीला में वही शंकर जी कृष्ण की सेवा करने के लिए राम का दूत बन करके हनुमान जी बनते हैं। हनुमान जी अलग से नहीं है, शिव जी भी वैसे ही। तो ये लोग गोपी बन करके उनकी सेवा करना ये अच्छा समझते हैं, इसलिए शंकर की जो भक्ति होती है वो गुरु भक्ति जैसी, और कृष्ण की भक्ति ही सर्वोत्तम। तो कृष्ण की सेवा के लिए तन मन वचन भावनाओं और आत्मा के साथ में नयन तर्ज बनाता हुआ कोई कृष्ण का सेवन करे, अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, अनुशीलन, अनुशीलन माने होता है अनु माने निरंतर, अनु माने अनुगत्य में, किसके अनुगत्य में? जो उनका सर्वश्रेष्ठ सेवक या सेविका है उसके अनुगत्य में निरंतर, एक सेकंड का भी अंतर न हो, तब तो उनका सेवन या भजन भजन होगा। भजन माने भी और कुछ नहीं, सेवा, भजन माने ध्यान कर रहे हैं ये सब नहीं। उधो मनन भयो दस बीस, एक हुतोसो गयो श्याम संग, एक हुतोसो गयो श्याम संग, को आराधे, उनका कौन ध्यान लगाए? बल्कि कृष्ण ध्यान करे गोपियों का, गोपियां ध्यान ध्यान नहीं कहते हैं, हम ध्यान जो भी नहीं जो ध्यान करें, तो इसलिए कहते हैं अनुशीलनम, भजन माने भी होता है सेवनम, एक आदमी ध्यान लगाता है सब कुछ करता है, कृष्ण का की सेवा नहीं करता, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? नहीं कुछ है, कुछ लाभ तो होगा किंतु वह लाभ नहीं होगा जो ब्रजवासियों को लाभ होता है, जिसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो ये तो हुआ, किंतु और एक कहते हैं अनुकूल्यन, अनुकूल अन्य सेवा करने को तो भक्ति कहते हैं, किंतु अनुकूल्य किस लिए कहते हैं? अनुकूल्य माने प्रतिकूल रूप में ना हो, जो कृष्ण चाहते हैं उसके अनुकूल सेवा हो, ऐसे नहीं समझेंगे, एक उदाहरण दे करके समझाऊं। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है, प्रसंग आया है, वो प्रसंग क्या? कौशल कैकेयी के वर्षे महाराज दशरथ के अनुमोदन से राम लक्ष्मण सीता जी दंडकारण्य चित्रकूट में पधारे, भरत आए, माता को धिक्कार दिया और बोले कि अब से तुम हमारी मैया नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, अब बेटा मत कहना, मैं तुमको राजरानी कहूंगी कहूंगा किंतु मैया नहीं कहूंगा। और सब वहां के अयोध्या वासियों को, वशिष्ठ जी को और सब लेकर के गए चित्रकूट में उनको मनाने के लिए, भैया तेरे बिना हम एक सेकंड नहीं जी सकते, कभी जी नहीं सकता, इसलिए पिता का बड़ा भाई राजा होता है, इसलिए आप चलिए, हम अभिषेक की सारी सामग्री ले आए हैं, आपका अभिषेक किया जाए। दैववशतः वहां पर महाराज जनक भी पधारे, सुनैना जी भी पधारे। पहले दिन तो वो लोग जब आए तो सुना जी महाराज दशरथ राम राम हा राम कह करके चले गए। राम जी बड़े शोक में आकुल हो गए और उन्होंने गोमती नदी में वहां की और उन्होंने उनको पिंड दान किया, जल जल प्रदान किया अपने पिता के। और दूसरे दिन में ये सभा होने वाली थी, भरत जी अपना वक्तव्य कहेंगे, राम भी अपना वक्तव्य कहेंगे। रात के समय में कौशल्या माँ के पास में भरत जी गए, उनके चरण में गिर करके रोने लगे, मैया राम तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, इसलिए भैया से कहो आदेश दो कि अयोध्या में लौट आए और राज्यभार संभाले, हम लोग उनकी सेवा। मैं कैसे कह सकती हूँ, वो भी तो अपने धर्म पथ में है, इसलिए मैं नहीं कह सकती। तो क्या मैं अन्याय कह रहा हूं? नहीं, न्याय नहीं कह रहा। तुम्हारी ममता राम के प्रति अत्यंत अधिक है, अनुराग है, स्नेह है, ये बात तो ठीक है, किंतु वो भी धर्म पथ में है, वो धर्म पथ में है। राम का धर्म पथ ऐसा है अपने प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, वो एवरेस्ट माउंटेन है। और इनका प्रेम जो है राम के प्रति वो महासागर एंडलेस अनंत अगाध, ये समुद्र है भरत का प्रेम। अगाध प्रेम में एवरेस्ट डूब सकता है प्रशांत महासागर में, किंतु डूबने पर भी टस से मस नहीं होगा। इसी तरह से भरत जी का प्रेम अगाध है, उसमें राम तो डूब जाएंगे, बात तो ठीक है, किंतु अपने धर्म पथ से एक केस भी चूल भी नहीं हटेंगे। अतः मैं कैसे उसको कहूं जो धर्म पथ छोड़ करके और अयोध्या चले। बहुत रोए भी गया है, किंतु मेरी बात भी समझो बेटा, तुम भी हमारे पुत्र हो, उनको मैं कैसे एक आदमी को ऐसे कहूं धर्म पथ से हटने के लिए। इसके बाद में तो फिर वो गुरु वशिष्ठ के पास में गए, गुरु जी आप कृपा करके राम से कह दो, हमारे भैया जी से, जो वह अयोध्या लौट है, आपकी बात को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते, अवहेला नहीं कर सकते, आप एक बार आदेश दे दीजिए, जरूर उनको मानना होगा। बात तो ठीक कहते हो, हमारी बात को कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा, किंतु मैं कैसे कहूं?
वो भी वही बात,
वो धर्म पथ पर है, तुम प्रेम के समुद्र हो, बात तो ठीक है, किंतु आवेश में मैं जानबूझ करके राम को क्या अन्याय करने के लिए कहूं धर्म पथ छोड़ देने के लिए? तब हाँ, एक बात हो सकती है, तुम उसके प्रतिनिधि बन करके वन में जाओ और यदि वो तुम्हारे स्थल में आ जाए तो ऐसा मैं कुछ उनसे बातचीत करूंगा, समझ रहे हैं ना? यदि प्रतिनिधि होकर के तुम उनके लिए वन में जाओ और वो यहां रहे तो ऐसा बात बन सकती है। बड़े खुश हुए, ठीक है मैं उनके लिए वन में जाऊं, किंतु फिर कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, वो नहीं जाएंगे। फिर सुनैना जी के पास में गए, भरत देखो कल की सभा होगी और उसमें निर्णायक विचार उनका होगा, सब लोग उन पर निर्भर रहेंगे, महाराज जनक जो कहेंगे हम दोनों मानते हैं, तो उस समय में आप अपनी पुत्री का ख्याल रखेंगे, सीता वन में ढोले आप चाहती हैं उसको क्लेश क्लेश हो, जो कभी राजभवन से निकली नहीं, जिनकी महावर भी सुखी नहीं विवाह का, सुकोमल चरण और वहां पर पत्थर नुकीले और बीस और जितने दानों राक्षसी ये सब हैं, आपकी बेटी जाए चाहती हूँ तो उनसे जरा कह देंगे कि वो लौट जाए। अजय ये तो मैं नहीं कह सकती, किंतु हाँ ये कहूंगी जरा ख्याल रखना, सीता वनवास में जाए भटके उसको कष्ट हो ना? तो रात तो ऐसे ही बीत गया, कोई ने इनकी बात नहीं सुनी, वो अपने ममता के समुद्र में अनुराग के समुद्र में ऐसे डूबे हुए हैं जो और उनको कोई चिंता नहीं, मानो कोई व्यक्ति ध्रुव तारा देख रहा है दिन रात उत्तर की दिशा में, उसको ज्ञान नहीं जो इधर क्या है उधर क्या है नहीं। इसलिए उस समय में जब दूसरा दिन हुआ, अयोध्यावासी लोग बैठे, ऋषि महर्षि एक तरफ में बैठे, एक तरफ में वशिष्ठ जी बीच में बैठे, दोनों के गुरु हैं, और एक तरफ में महाराज जनक कैसे हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके समय वैराग्यमान और ब्रह्म तत्व को जानने वाला उस समय में दूसरा नहीं था, सुखदेव गोस्वामी जी उनसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जाते। तो वो भी बैठे, वशिष्ठ जी ने कहा रघुकुल के ऊपर में बड़ी भारी विपत्ति आई, बहुत बड़ी भारी, मानो वो समुद्र में वो आंधी विराट आंधी में फंस गई हो, कभी इधर डगमग कर गई। अभी समय कोई इनको बुद्धि देने वाला नहीं, भगवान की बड़ी कृपा थी जो आप महाराज जनक पधारे हैं, अब राम को और भरत को क्या करना चाहिए ये निर्णय आपको देना है। उन्होंने कहा कि मैं तो छोटी बुद्धि का हूं, किंतु मैं आराध्य देव से ये प्रार्थना करूंगा जो हमको सद्बुद्धि दीजिए वैसा निर्णय दे। उन्होंने पूछा कि मेरा निर्णय राम तुमको स्वीकार होगा? उन्होंने कहा जी पिताजी तो रहे नहीं, वशिष्ठ जी अभी कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए आप ही हमारे माता पिता और गुरु के स्थान में भी हैं, इसलिए जैसा आप देश देंगे मैं इसी पर कुछ घर करके पालूंगा। इधर मैं भरत की तरफ में देखा, उन्होंने कहा जैसे आप हमारे माता पिता हैं, आपका विचार का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, जैसा आप आदेश देंगे वैसा करूंगा। तो ठीक है, उन्होंने ध्यान किया अपने गुरु का शंकर जी को, तो ध्यान करके थोड़ी देर के बाद आप खोल करके बोले देखो भरत, मैं इस सभा के बीच में बोल रहा हूं, तुम्हारा अनुराग अथाह अनंत है, तुम्हारा राम के प्रति अथाह अनुराग है, इसलिए तुम्हारी जीत हुई, राम की हार यहां हुई। प्रेम नहीं जानता है नीति, प्रेम नहीं जानता है और सब, प्रेम प्रेम की बात नहीं जानता है, इसलिए तुम्हारी जीत हुई। सब अयोध्यावासी भरत इत्यादि बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। राम गंभीर मुद्रा में है, उस समय में फिर बोलते हैं तुम्हारी जीत तो हुई, किंतु एक बात करो, जो आराधक है जो आराध्य है उसमें एक संबंध होता है, प्रेम का संबंध होता है, प्रेम की भी अपनी मर्यादा है, वो क्या है, सेवक को ये देखना है अपना सुख दुख नहीं देखना है, अपना कुछ विचार नहीं करना है, क्या उसको देखना है, हमारा आराध्य किस बात में सुखी हो सकता है ये देखना चाहिए। तुम विचार करो जो तुम्हारे इष्ट देव राम हैं, राम किस विषय से क्या करने से सुखी होंगे ये तो जरा उनसे पूछो। भरत जी थोड़े देर के लिए चुप हो गए और फिर साष्टांग प्रणाम किया महाराज जनक के चरणों में, मेरी आंखें आज खुल गई, अभी तक मैं अपना विचार कर रहा था, हमारे दृष्टि से राम कैसे प्रसन्न होंगे, किंतु राम की दृष्टि से राम कैसे प्रसन्न होंगे ये मुझे पता नहीं था, आज आप मेरे गुरु हैं आंखें खुल गई। इस सेवा का कर्तव्य क्या है, उसका इष्ट देव जो आराध्य है वो क्या चाहता है, वो किसमें प्रसन्न होगा। भरत जी रामचंद्र जी के आगे गए, बोले जी आज तो मेरी आंखें खुल गई, अब तक मैं अंधा था, मैं अपना सुख दुख देखता था, जे आप वहां जाने से मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, सब अयोध्यावासी को मिलेगा, किंतु आपको जाने से कष्ट होगा कि क्या, ये मैं नहीं सोच रहा था, प्रभु आप बतलाइए आप कैसे प्रसन्न हूं, क्या कर रहे मैं उसको मैं मानूंगा। रामचंद्र जी ने कहा तुम्हारी तो जीत जनक जी ने करी दी है, ये तुम जीत गए तो तुम्हारी जीत हो गई है। तब एक बात है, तुम्हारी जीत होने से मैं अयोध्या का राज्य अभिषेक हमने ले लिया, अयोध्या का मैं राजा हूं अभी से हूं। किंतु मैं प्रसन्न होऊंगा अयोध्या का राजा होने पर भी। ठीक, तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर और अयोध्या का मंत्री के समान राज कार्य संभालो। मैं 14 वर्ष तक पिता का आदेश पालन करके आ जाता हूं, इसमें प्रश्न। सारी सभा चकित रह गई। यह है सेवा, यह है भक्ति। इस श्लोक में इसकी बात कही गई है। अपना सुख मत देखो, अन्याभिलाषिता शून्यम। जितनी प्रकार की कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारा तन मन वचन का प्रयास है, भावनाओं का प्रयास है, कृष्ण को सुख देने के लिए हो, अपने लिए नहीं, इसलिए अन्नाभिलाषिता शून्य। लौकिक पारलौकिक कोई भी चेष्टा अपने लिए नहीं, स्वार्थ में नहीं। और दूसरी ज्ञान कर्म आदि अनापत्ति, शरीर रहते हुए जिनका निर्वाह जरूरी है तब तो भक्ति करेंगे, और यदि मर गए तो फिर क्या होगा। इसलिए जीवन का निर्वाह करना भी जरूरी है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहकर भिक्षावृत्ति से, चाहे वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकरी, ये तो करना है, किंतु भाव वही रहे जो कि श्लोक में बतलाया। उसके लिए कर्म के द्वारा भक्ति ढकने जाए, ज्ञान के द्वारा भक्ति ढकने जाए, और योग तपस्या इत्यादि के द्वारा भक्ति न ढक जाए। अधिकांश लोग ऐसा ही करते, बिना कर्म के हुए भक्ति कैसे होगी। अरे भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, इसके लिए ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। एक महामूर्ख आदमी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, और एक महाविद्वान आदमी नहीं कर सकता। जितने भारतवर्ष में विद्वान, जाइए हरिद्वार में, जाइए काशी में, जाइए दक्षिण कांची या काशी में, बड़े बड़े अगाध विद्वान हैं। वो लोग क्या करते हैं, अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, नहीं वही ब्रह्म सारे जगत को, सर्वम खलिदम् ब्रह्म। यदि सर्वम खलिदम् ब्रह्म ही हो गया, तुम भी ब्रह्म हो गए, तो भक्ति कहां रही। इसलिए श्रीमद् भागवत में इसका खंडन किया गया, ये भक्ति नहीं, हम कृष्ण अपने लिए कह सकते हैं ये मैं ब्रह्म हूं, ये कह सकते हैं। तत्तम असि तस्य तम असि, तुम उसके हो, ये उसका अर्थ है। लोग लगा देते हैं जो तुम ही वही हो, तो तुम ही हो तो बोल कैसे रहे हो, तो तुम दोनों मिलकर के एक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आज तक जगत में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो किसी चीज में किसी कोई चीज मिल जाए। एक उदाहरण के लिए बताओ, एक ग्लास पानी है भरा हुआ, उसमें पानी डालो दूसरे ग्लास, तो मिल गया ना पानी, पानी नहीं मिला। यदि पानी में पानी मिल करके एक हो जाता तो वो ग्लास से गिरता नहीं। अब उस भरे हुए ग्लास में पानी दो, मालूम तो होता है मिल रहा है, किंतु मिला नहीं, क्या हुआ, कुछ हो गया, गिर गया। यहां पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। उसी तरह से सारा संसार कृष्ण में है और सारे संसार में कृष्ण है, किंतु कृष्ण और जीव एक नहीं है। इसलिए भक्ति में ये भाव रहता है, सेवक और सेव्य का, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरे। इसलिए कृष्ण स्वयं अपने तो सेव्य हो गए, और अपने आधे अंग को राधा जी और शक्तियों के रूप में बदल कर और प्रकट होकर के अपने से ही अपनी सेवा करते हैं, नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को इन भावों को समझना जरूरी है। ये प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम माने अभी बतलाया कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण ही को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की भक्ति। आगे इसकी और भी कुछ मैं कहूँगा। अभी चतुर्वेदी जी एक और कुछ बड़ी रसक वाली कुछ सुनाई, जो भी
दिखाया करें क्या कह रही है, काबादी करो कछु बस नहीं मेरो, काबादी करो कछु बस नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जाया करे हाँ, पंख नहीं उड़ जाया करे जातक न हो अब तो क्या
गीता में एक श्लोक आया मन मनाम भव मद भक्त मदयाजी मदयाजी मां नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिज्ञानो प्रियोऽस्मि। कृष्ण अर्जुन के कहने पर पहले गीता का प्रतिपाद्य विषय, इसके बाद में गूढ़ आत्मतत्व भगवत तत्व गूढ़तर और उसे भी गूढ़तम और उन गूढ़ोत्तमों में भी सर्वगूह्यतम, इस श्लोक में इन्होंने उच्चरित किया मन मना भव। अर्जुन मन मना भव, मन मना भव किसको कहते हैं? मत मन भव, अपना संपूर्ण मन हम में लगा दे, मन उसका दूसरा कोई ना रहे जो इधर उधर जाए, या ऐसा कर दे जो अपनी सेवा से मेरा मन अपने में ऐसा लगा दे जो खुद मेरा मन भी इधर उधर नहीं। उदाहरण क्या? गीता में इसका उदाहरण नहीं दिया, गीता में थ्योरी के रूप में प्रतिपादन किया है तत्वों का, किंतु उसका उदाहरण नहीं दिया। भक्त कहा, भक्ततर कहा, भक्ततम कहा और सब कहा, किंतु उदाहरण नहीं है। उसका उदाहरण गीता भागवत में सभी दिए गए हैं, क्योंकि व्यास का लिखा हुआ गीता है और महर्षि की लिखी हुई श्रीमद ये भागवत है। समस्त वेदांतों का सार, उपनिषदों का सार, गायत्री का अर्थ और महाभारत का तात्पर्य सब कुछ वेदों में ही श्रीमद् भागवत में नहीं है, ब्रह्म सूत्र का भाष्य भी। तो उसमें कह रहे हैं मनमनाभाव। मनमनाभाव का उदाहरण क्या, विश्व में कहीं नहीं है मनमनाभाव का। बड़े बड़े भक्त लोग हैं, किंतु इसका उदाहरण है ब्रज में। जैसे सुनो, इधर दमक चित्त हो, कोई नवेली ब्याह करके आई नंदगांव में। नवेली समझते हैं, बिल्कुल नहीं। उसको सास ने समझाया, यहां पर एक काला सर्प है, जरा बच कर के रहना, यदि काट दे किसी को तो उसका जीवन भर में कहीं नहीं उतरता, वैसा उसका विष है, कभी नहीं उतरेगा ही। उसे सावधान था, उसने पहले से ही वो कृष्ण काले सर्प का नाम तो सुन रखा था, किंतु अनुभूति नहीं थी कि अभी देखा अभी सुना है। और ब्रज में आई तो सभी बस काले की ही बात करते हैं। कृष्ण देखा जैसे उसकी बड़ी आकांक्षा है जो मैं उससे मिलूं। तो जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जिसकी रही भावना जैसी हरि मुहूर्त देखा। कृष्ण उसकी मन की भावनाओं को समझ गए, अच्छा जैसे तैसे उसे मिलना है। लाख लाख गाय बछड़ों के साथ में आ रहे, बलदेव जी सिंगा बजाते हुए जरा पीछे हैं और कृष्ण कन्हैया बंसी वादन करते हुए सखाओं से मिल करके, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्णिकारम बृहपत वास कनक कपिशम भय जयंती चमा रंध्राण वेणु अदर सुधया पूरयन बिंदा रमणम सपदर्मणम प्राविशत गीत। कृष्ण बछड़ों को चराते हुए धारा, जरा कृष्ण तू ये कृष्ण को दर्शन करना चाहती है, घर के किसी काम में लगी हुई थी और मैया पहरा दे रही थी जो घर से न निकले मेरी बहू। ये इसने कहा जे बंसी की आवाज सुन रही हूं, आदेश करिए मैं थोड़ा सा जाकर के उसका दर्शन करो। ना खबरदार मत जाने, मत जाने, तो तुम्हारी बिटिया क्यों गई देखने के लिए? अपनी बिटिया का मना नहीं किया और हमको मना कर रही है, और आप भी कर रही है जब तुम यही रहो और मैं जाऊंगी, आप उनको देखने के लिए जा रही है तो मेरे लिए निषेध क्यों? अरे तुम अभी कच्ची है, पकी हुई नहीं है, इसलिए मैं कहती हूं ना जब तुम घर से ना निकलो। किंतु नहीं, ये घर से निकाल देंगे यही तो होगा, आप निकालिए या रखिए ये आपकी मर्जी पर, किंतु मैं तो जाऊंगी। वो तो निकल करके दरवाजे पर आई और दरवाजे से एक टक झरोखे से देखने लगी, एकदम अधीर नैनों से देख रही है। और कृष्ण ने देखा कि वो नवेदी आई हुई है, दरवाजे पर खड़ी है, उसने एक बछड़े का पूंछ, उसकी पूंछ थोड़ी सी स्पर्श की और वो कुत्ता हुआ उधर ही आया जिधर में कृष्ण चाहते, ठीक दरवाजे पर आ, और वो भी त्रिषित नयनों से एक टक करके कृष्ण को निहार रही, निकट में आए और अपनी बंसी से उसको ऐसे थोड़ा सा उचका दिया और फिर आंखों में आंखों मिला करके उसका हृदय लेकर के बस। जब चले गए तन्मय एकदम हो गई, कृष्ण चले गए, बछड़े चले गए, सखा लोग चले गए और वहीं एक टक खड़ी है, न हिलती है न डुलती है। उस समय में उसके सास, अरे क्या तुमको कहा था ना, ठीक वही हुआ, मेरी बात नहीं मानी, काट दिया ना, अभी सूत्र है, चल उसको पकड़ करके जब झोरा और पकड़ करके खींच करके घर में ले आई। दधि मंथन करो, जाओ घर से ले आओ, मटकिया भरी दही से भरी पड़ी है और उसमें मंथनी लगा दी, दधि मंथन करो। तो वो घर में गई और एक हंडिया उठा लाई, दही है ना क्या है वो नहीं देखी, देखी जो उसमें वो राई भरी पड़ी है और राई को ही दही समझ करके मंथन कर ले, मन तो है नहीं। उसने देखा उसकी सास ही राई क्या कर रही है, मैंने कहा दधि मंथन कर या राई मथ रही, जरा होश तो संभालो, जरा ये पनखट से पानी ले आओ भर कर। ब्रज में बहुत दूर दूर तक नमकीन पानी होते हैं, बहुत कम कुओं में पानी होता है मीठा, बहुत दूर पर करें तो उसको कहते हैं पनघट। पनघट माने क्या, राधा जी का पन है, गोपियों का पन है जो वहीं पर मिलना, और कृष्ण का भी पन है हम तुमसे वहीं पर मिले, ये पन है जहां पर घटता है उसको कहते हैं पनघट। पनघट से जा पानी लिया दारे से, उसके हाथों में बड़ी सी लंबी रस्सी दे दी और एक डोल होता है, डोल माने पानी भरने का, या एक घड़ा दे दी छोटी सी जो से कुएं से पानी लगा निकाल करके इसमें भरना और तब पानी लाए, और एक छोटे से बच्चे को उसकी गोदी में रख, एक बच्चा घड़े पर घड़ा बैलेंस ठीक है गोपियों का, पकड़ना नहीं है वो तो चलती जाएंगी, इधर खिलाएंगी ऐसे करेंगी मटकेंगी भी नित्य भी करेंगे तो वो घड़ा गिरेगा नहीं। बच्चे को भी ले लिया, रस्सी भी बड़ी ले ली, डोल भी ले ली और चली पनघट पर। अभ्यास बसता तो पनघट पर, वहां पर कुएं पर तो पहुंच गई, कुएं को पर बच्चे को रख दिया और रख करके घड़ा रख दिया और उसमें रस्सी की डोरी को बांधना है घड़े में जो पानी ले, तो वो घड़ा भूल गई और बच्चे के गले में। ये तन्मय है, ये तो तन्मयता है ना, कृष्ण में ऐसे तन्मय हो गई, ऐसे तन्मय होना है कृष्ण। गोपियां इससे भी दूसरा कोई उदाहरण नहीं है विश्व जगत में। कुछ गोपियों ने उत्तर दिया, अरे देखो देखो क्या कर रही, तो कुछ बोली ये पागल हो गई है, हाँ इसको भूत लग गया, और कोई जो जानने वाली थी वो कहती है भूत नहीं कृष्ण का नंद का पूत लग गया। ये है मन बना भाव, ऐसा यदि कृष्ण में तन्मय हो जाएंगे तो यहां पर कृष्ण कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से ऐसा तन्मय कौन है, इसलिए उद्धव को कहते हैं उद्धव ब्रज में जाओ, गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य पितृ नौ प्रतिमा वह गोपीनांग मयोगावधि मत संदेश। गोपियां कैसी हैं, ता मन मनस्का, वही मन मना मन मनस्का, मैं ही उनका मन हूं प्राण हूं सब कुछ हूं, या वे मेरे प्राण हैं, ऐसी गोपियां हैं। मत प्राण मेरी प्राण है, अथवा गोपियां का प्राण है मैं हूं, इसलिए मर नहीं जाती क्योंकि कृष्ण में प्राण सुरक्षित है, यदि उनके पास यह मन होता है तो कभी की मर गई, किंतु मरती नहीं है। किस लिए, कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं, वो देखते हैं कि यदि गोपियां मर गई तो किसको दुख दूंगा, गोपियां कहती हैं इसलिए मेरे प्राणों को अपने अंदर में रख लिया है जिससे मर नहीं रही, और दुख भी देते हैं प्राण निष्ठुर, कहते हैं मत प्राण मदर्थे त्यक्त जय है अनुकूलन कृष्णानुशीला, मदर्थे मेरे लिए अपने देह दैहिक सबको कुल कर, दैहिक मैंने क्या अपना धर्म कर्म पति सब कुछ, संसार का धर्म अधर्म वेद धर्म लोक धर्म पति की सेवा इत्यादि सब कुछ मेरे लिए कुल चुकी मदद थी। माम एव दैतम, मैं ही उनका एकमात्र प्रिय, या माम एक दैतम, मेरी एकमात्र सबसे बड़ी वही प्रियाएं हैं, संसार में है प्रियाएं, किंतु गोपियां जा सकेंगे पृष्ठम आत्मा पृष्ठ गोप्य मथुरा में जादों में वो श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ, किंतु ब्रज में क्या है प्रेष्ठ है, सबके प्रिय है। नंद बाबा कहेंगे मेरी पादुका लेते आइए, तो जो गोवर्धन गिरिराज को उठा सकते हैं वो उनकी पादुका को भी उठाने में असमर्थ है, या उठाते हैं तो सिर पर रख करके नृत्य करते हुए आते हैं। नंद बाबा कहीं जाते हैं उनकी पादुका सिर पर रख करके जाते हैं, तो ये है पृष्ठ प्रिय। मनसागता, मन को सब प्रकार से हमें दे दी गई है। उद्धव भाई मद वियोग अवधि, ब्रजवासियों को मेरे प्रति प्रीति है, वियोग है, वियोग का दुख, ब्रज का ऐसा कोई नहीं है जिसको उनका वियोग नहीं है। अतः यहां तक कि पतंगों में भी मयूरों में भी उसका वर्णन हमारे गोस्वामियों के पदों में बड़ा सुंदर है। ऐसा वियोग मोर अब बोलते नहीं, कोयल अब नाचती नहीं, बछड़े दूध नहीं पीते, ऐसा वियोग। तो ये तो जानवरों में ऐसा, तो मनुष्यों में क्या होगा। ब्रजवासियों में भी वियोग है किंतु जसोदानंद जैसा, और जसोदानंद जसोदा मैया में भी वियोग है किंतु गोपियों जैसा, गोपियां जैसे पागल हो जाती हैं वैसे ये लोग नहीं हो सकते। कहते हम वियोग की अवधि तक ओ मत संदेश तुम चेष्टा मत करना उनको कोई सांत्वना देने के लिए, हमारे बस की बात नहीं। तुम यदि अपने मन से अपनी बुद्धि से विद्या से ज्ञान से तत्व से यदि उनको समझाने की चेष्टा करेगा तो आग बढ़ती जाएगी, इसलिए मत संदेश, मैं जो संदेश कर रहा हूं वही उनको कहना। और एक नहीं दो चार पांच छह संदेश कृष्ण ने उनको दिए, यदि इस संदेश को देना यदि ठीक है संत है तो ठीक, नहीं तो ये संदेश ये इससे नहीं होगा तो तीसरा, फिर चौथा पांचवा छठा, बहुत से संदेश उन्होंने दिए, संदेशों को अपने मन के अंदर में भर लिया और जाने की तैयारी कर ली। मैता प्रियसा पृष्ठे दूरस्थे गोकुल प्रिय, अरे कृष्ण तत्व को जानने वाले या कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है सब जगह है, फिर उनको वियोग कैसा गोपियों को। जैसे एक घड़ा बनता है, घड़े का कारण है कुमार और चक्र और डंडा और सूत्र, ऐसा कर करके मट्टी को अपने घट लेते हैं, खटा हो घट हो गया और फिर सूत्र से काट देते हैं घड़ा हो गया। यदि घड़ा ये कहे कि हमसे कुम्हार का सूत्र का और चक्र का कोई संबंध नहीं है, ये हो सकता है मान सकते हैं, किंतु मिट्टी से मेरा संबंध है ये तो कह नहीं सकते। कृष्ण का शरीर जो बना है, कृष्ण का सब कुछ जो हुआ ये कहां से बना, मैया को अस्वीकार कर देंगे, निश्चित तो बने हैं इसके स्वीकार। तो सर्वत्र ही तो कृष्ण है, तुम हो कृष्ण, उद्धव को उद्धव जी से कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव जी प्रश्न कर वियोग कहाँ है उनका, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें मिट्टी का घड़े में वियोग कहाँ है, उसी तरह से कह रहे हैं वियोग तो नहीं है। ओ गोपिया जो भी नहीं है दूरस्थे कहाँ, मथुरा में, मैं मथुरा में हूँ, यहाँ जो बिना मेरे देखे हुए प्राण के समान में एक मिनट का समय भी उनके लिए जुग बीतता था और मेरे मिलन में एक क्षण की आंखों का पलक भी उनसे सहा नहीं जाता, आज उनको छोड़ करके मैं माता पिता और उन गोपियों को छोड़कर कहां दूर मैं बैठा हूं, दूर नहीं है, कल बतलाया था वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है, एक सूत्र मात्र की, इधर मथुरा इधर वृंदावन, किंतु भाव की दूरी बहुत है, करोड़ों माइल से भी अधिक ऐश्वर्य भूमि और माधुर्य भूमि, दुरस्ते गोकुल स्मरण तो ही अंग स्मरण करती है। मर क्यों नहीं जाती? इसलिए कि एक आशा रखी हुई है कल अनेत परसों जरूर लौट, आश्वासन दिया होती है। उन्होंने रथ को जाते हुए अक्रूर को पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, एक इंच भी बढ़ने नहीं दिया। तो कृष्ण उतर आए और आश्वासन दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि मैं कल या परसों जरूर लौट बंद जरूर लौट आऊंगा। किंतु लौटे संत संकल्प होने पर भी कल गया, परसों गया, परसों गया, तो वो मेरे गृह में ऐसी पंथी का विघ्न है। बस यही एक आशा लटकी हुई है, यदि जाएंगे कृष्ण आएंगे, जरूर सत्य संकल्प है, हमें विश्वास है जब कृष्ण आएंगे और देखेंगे ये मर गई है तो भी यदि मर गए, ओ जाने की इच्छा थी। और जाने की कैसी इच्छा थी? ललिता विशाखा जी से कह रही है कि देखो अब योग नहीं मुझसे सहारा, मर जाऊंगी बहुत जल्द, वो आए नहीं, मिलन तो हुआ नहीं, तो मेरे सर को शरीर को ऐसे लटका देना, तमाल के बीच में बांध देना और उसकी शरीर में जो मट्टी इत्यादि है जहाँ कृष्ण विचरण करते हैं उस पथ भूमि लग जाए, जैसे उनके चरणों की धूली हमारे, और हमारे शरीर का पानी पवन स्वरों में जहाँ पर कृष्ण स्नान करते हैं, मैं उनको अपने पानी से उनके सबों खाद बिंदता अभिषेक कर, और यहाँ की हवा नंदगांव के आकाश में मड़राती रही क्योंकि मैं उनके मुखार बिंद को चुन सकूँ, और अग्नि कहाँ जाए, सूर्य की ज्योति में जहाँ पर कि उनकी रोशनी पड़ती है मैं उनको स्नान कराती रही। फिर सोचकर मरना मरना तो हुआ नहीं, क्यों नहीं, विशाखे में क्या कुंडल थे इसलिए मत नहीं रहा, वो आने के लिए कहा है वो जरूर आएंगे, जो कहते हैं वो होता है, जरूर आएंगे, किंतु आएंगे देखेंगे कृष्ण नहीं तो क्या होगा, इसलिए मेरा मरना नहीं। इस तरह की विरह की बात है और क्रमशः बढ़ेंगी, जिसमें आदमियों का जिसको भक्ति है वो अपने आंसू को रोक नहीं सकता। आज यही पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और शिष्ट में जहाँ तक हो सकेगा कल अपने भाषण में गोपियों के विरह के संबंध में मैं कुछ और आगे गौर प्रमाण।